एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें किसी एक खांचे में फिट करना लगभग नामुमकिन है। गायिका, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बारबरा स्ट्रीसेंड की, और जरिया है क्रिस्टोफर एंडरसन की लिखी जीवनी बारबरा, द वे शी इज।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ उनकी कामयाबी की लिस्ट नहीं है ना?
जी,
ये तो उस मतलब असाधारण जिंदगी के पीछे जो दिमाग चल रहा था, जो भावनाएं थी, उन्हें समझने की गहरी कोशिश है।
सही कहा, बारबरा स्ट्रीसेंड मतलब एक फिनोमिनन है वो। मनोरंजन की दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ईगोट जीता है, एमी, ग्रैमी, ऑस्कर, टोनी, चारों बड़े अवार्ड्स।
जी हाँ, ईगोट क्लब। और उनकी कहानी सिर्फ अवार्ड्स की नहीं है, ये कहानी है जिद की, जुनून की और खुद पर अटूट विश्वास की।
और आज भी ये कहानी बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि टैलेंट, बचपन के शायद कुछ गहरे जख्म और एक किस्म का जो परफेक्शनिज्म होता है ना,
हाँ, वो जुनून, बिल्कुल,
वो सब मिलकर एक ऐसी ताकत बन सकता है जो पूरी इंडस्ट्री को हिला दे, और वो भी उस जमाने में जब महिलाओं के लिए टॉप पर पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल था।
हाँ, किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या था जो उन्हें ड्राइव कर रहा था, दुनिया की सबसे कामयाब, सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक बनने के लिए क्या चाहिए होता है। क्या वो सिर्फ एम्बिशन था, या जैसा एक नज़रिया कहता है, बचपन में जो प्यार, जो पहचान, जो कंट्रोल नहीं मिला, उसकी गहरी प्यास थी जो कभी बुझी ही नहीं।
या फिर एक दूसरी बात भी सोची जा सकती है, क्या ये उनकी अपनी कला, अपनी सोच के प्रति पूरी वफादारी थी कि मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, कोई समझौता नहीं, और इसी जिद ने उन्हें इंडस्ट्री के दबावों के बावजूद ऊपर पहुंचाया।
अच्छा पॉइंट है, शायद दोनों बातें हो।
हाँ, हो सकता है। तो चलिए इस बहुआयामी मतलब मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी की परतों को खोलते हैं।
तो कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन से, साधारण माहौल, बल्कि कहें तो गरीबी। सिर्फ 15 महीने की थीं जब पिता गुजर गए, वो एक स्कॉलर थे।
ओह, बस 15 महीने की?
हाँ, और पिता के बिना बड़े होने का जो खालीपन था, किताब कहती है कि वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहा, और इसी वजह से शायद उनमें मजबूत, समझदार मर्दों से एक तरह की मंजूरी पाने की चाहत पैदा हुई।
और घर में माँ थी डायना, वो खुद भी सिंगर बनना चाहती थी पर बन नहीं पाईं। और उनका रवैया बारबरा के लिए अक्सर ठंडा सा, आलोचना भरा रहता था, खासकर बारबरा के लुक्स, उनकी नाक को लेकर, यहाँ तक कि उनकी शुरुआती गायकी पर भी सवाल उठाती थी।
अच्छा।
हाँ, माना जाता है कि यही उनकी जो गहरी इनसिक्योरिटीज थी, उनका शायद ये एक बड़ा कारण बना। उन्हें हमेशा लगा कि माँ ने उन्हें वैसे प्यार नहीं किया जैसे करना चाहिए था।
तो इसी माहौल में शायद वो ध्यान खींचने, तारीफ पाने की एक एक जबरदस्त इच्छा जागी होगी, है ना?
बिल्कुल।
और साथ ही हर चीज को कंट्रोल करने की, उसे परफेक्ट बनाने की जरूरत, क्योंकि बचपन में तो कंट्रोल था नहीं हाथ में, तो शायद वो अपने काम, अपनी कला से वो कंट्रोल पाना चाहती थी। इस बात पर किताब के दोनों नजरिए कहीं ना कहीं मिलते हैं।
उन्होंने फिर अपनी अलग पहचान को ही अपना हथियार बना लिया, जैसे वो अजीब से कपड़े पहनती थीं, अपनी आवाज पर उनको शुरू से ही बड़ा भरोसा था।
हाँ, वो कॉन्फिडेंस तो था उनमें,
तो ये सब जैसे उनकी ढाल बन गया। और फिर वो ब्रुकलिन छोड़कर मैनहट्टन आ गईं, ग्रीनविच विलेज, जहां उनकी अनोखी आवाज को पहली बार सही मायने में सुना गया। ग्रीनविच विलेज के छोटे छोटे क्लब्स में शुरुआत हुई, आसान नहीं था बिल्कुल, उस वक्त खूबसूरती के जो स्टैंडर्ड थे, बारबरा उनमें कहीं फिट नहीं होती थी।
हाँ, वो टिपिकल स्टार मटेरियल नहीं समझी जाती थी शायद।
बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी शर्तों पर पहचान बनाने की ठान ली।
और फिर आया वो बड़ा ब्रेक, ब्रॉडवे पर म्यूजिकल आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, इससे उन्हें पहचान मिली और टोनी नॉमिनेशन भी।
और यहीं से ये भी साफ हो गया है कि ये सिर्फ गाने वाली नहीं है, ये अपनी कला पर पूरा कंट्रोल चाहती हैं। उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए और कैसे चाहिए।
कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी इसी का सबूत है। उन्हें गाने चुनने की, उन्हें अपने तरीके से गाने की पूरी आजादी मिली। ये किसी नए आर्टिस्ट के लिए उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात, और नतीजा एक के बाद एक सुपरहिट एल्बम।
और फिर आया फनी गर्ल।
हाँ, फनी गर्ल, पहले ब्रॉडवे पर फिर फिल्म, फैनी ब्राइस का किरदार। ये सिर्फ एक रोल नहीं था, ये जैसे बारबरा खुद थी, एक ऐसी लड़की जो पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं पर अपने टैलेंट, अपनी हाजिर जवाबी, अपनी हिम्मत से स्टार बनती है।
हाँ, ये तो बिल्कुल उनकी कहानी लगती है।
बिल्कुल, किताब इसे उनकी पहचान का प्रतीक मानती है। इसी दौरान उनकी शादी एलियट गोल्ड से हुई। शुरू में इससे उन्हें थोड़ी स्टेबिलिटी मिली, लेकिन हॉलीवुड का सफर भी तूफानी रहा। फनी गर्ल फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर विलियम वाइलर और को स्टार उमर शरीफ के साथ उनके झगड़ों के किस्से तो बहुत मशहूर हैं।
हाँ, सुने है, कहते हैं वो बहुत डिमांडिंग थी सेट पर।
कुछ लोग कहते हैं ये उनके अंदर का डर था, असफलता का डर, और हर चीज परफेक्ट करने की जिद। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी।
और नतीजा शानदार रहा, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर पहली ही फिल्म के लिए।
कमाल,
ये उनके लिए सबसे बड़ी मान्यता थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, करियर ऊपर गया तो पर्सनल लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गईं। शोहरत का दबाव, उनकी खुद की बढ़ती ताकत, एलियट गोल्ड से उनकी शादी टूट गई।
इसके बाद हेलो डॉली आई, द वे वी वर आई, रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ उनकी केमिस्ट्री तो पर्दे पर गजब की थी।
हाँ, वो तो आइकॉनिक है।
लेकिन कहते हैं पर्दे के पीछे काफी टकराव भी था। ये दिखाता है कि वो बेस्ट पाने के लिए मुश्किल टकराव से भी पीछे नहीं हटती थी।
फिर उनकी जिंदगी में जॉन पीटर्स आए। पहले हेयरड्रेसर थे, फिर प्रोड्यूसर बने। उनके साथ बाबरा का रिश्ता करीब 10 साल चला। बहुत तूफानी, बहुत उतार चढ़ाव वाला, लेकिन क्रिएटिव तौर पर बहुत कामयाब रहा।
अच्छा।
पीटर्स ने उन्हें और ताकतवर बनने, मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया। किताब बताती है कि पीटर्स शायद उन कुछ लोगों में से थे जो बाबरा की पावर से डरते नहीं थे, बल्कि उसे बढ़ाते थे।
इस पार्टनरशिप का नतीजा था 1976 की फिल्म ए स्टार इज बॉर्न का रीमेक।
बनाने में खूब ड्रामा हुआ, बजट बढ़ गया, सेट पर झगड़े हुए।
कंट्रोवर्शियल रही थी वो फिल्म।
लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसने बाबरा को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि हॉलीवुड की एक बहुत पावरफुल प्रोड्यूसर बना दिया। इस पर तो खैर दोनों ही नजरिए सहमत हैं।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शोहरत, इतनी ताकत के बाद उन्होंने एक और शायद सबसे बड़ी चुनौती चुनी, डायरेक्शन।
डायरेक्टर बनना। हाँ, फिल्म येंटल को डायरेक्ट करने का सपना वो 10 साल से देख रही थी, लेकिन हॉलीवुड का जो मर्दों का दबदबा था ना।
हाँ, वो तो था ही।
वो तैयार नहीं था। उन्हें लगातार जेंडर बायस का सामना करना पड़ा। लोगों को यकीन ही नहीं था कि एक औरत, वो भी एक ग्लैमरस स्टार, डायरेक्शन, राइटिंग, प्रोडक्शन, एक्टिंग, सब कुछ एक साथ कैसे कर सकती हैं।
लेकिन उन्होंने कर दिखाया। येंटल न सिर्फ कामयाब हुई बल्कि इसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मील का पत्थर माना गया। इसने दरवाजे खोले, सोच बदली, साबित किया कि औरतें भी कैमरे के पीछे कमाल कर सकती हैं।
जी हाँ, बाद में उन्होंने द प्रिंस ऑफ टाइड्स डायरेक्ट की। फिल्म को बेस्ट पिक्चर समेत कई ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले।
लेकिन उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन नहीं मिला।
नहीं मिला, और कई लोगों ने इसे फिर से इंडस्ट्री के जेंडर बायस का सबूत माना।
फिल्मों के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी सपोर्टर ऑफ फंडरेजर बनी। अपनी फेम का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बोलने के लिए किया जिनमें वो यकीन रखती थी।
लेकिन इस सारी चमक दमक और ताकत के पीछे एक अंदरूनी लड़ाई भी चल रही थी। स्टेज फ्राइट, मंच पर जाने का डर।
क्या बारबरा स्ट्रीसैंड को स्टेज फ्राइट? यकीन नहीं होता।
हाँ, दुनिया की सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक, और करीब 27 साल तक उन्होंने पैसे लेकर कोई कॉन्सर्ट नहीं किया।
27 साल? क्यों?
किताब इशारा करती है कि इसकी जड़ें शायद उनके परफेक्शनिज्म और आलोचना के डर में थीं। वही डर जो शायद बचपन में माँ की बातों से जुड़ा था।
तो फिर 1994 में उनका जो वापसी कॉन्सर्ट था, द कॉन्सर्ट।
हाँ,
वो तो सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं रहा होगा फिर। वो तो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी उनके लिए।
बिल्कुल, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना और उसे जीतना।
और पर्सनल लाइफ में भी फिर एक ठहराव आया। उनकी शादी एक्टर जेम्स ब्रोलिन से हुई।
हाँ, और जीवनी के मुताबिक ब्रोलिन शांत, सिक्योर किस्म के इंसान थे, और बारबरा की इतनी बड़ी शोहरत से जैसे उन पर कोई असर नहीं पड़ता था।
अच्छा,
ऐसा लगता है कि उनके रूप में बारबरा को वो बिना शर्त वाला प्यार, वो इमोशनल सेफ्टी मिली जिसकी उन्हें शायद हमेशा से तलाश थी, और इससे उन्हें एक तरह की अंदरूनी शांति मिली।
तो आज जब हम उनकी विरासत देखते हैं, कला के प्रति वो पूरा समर्पण, औरतों के लिए एक प्रेरणा, एक कल्चरल आइकॉन, और हाँ, वो ईगॉट विनर का टैग, ये सब मिलकर बारबरा स्ट्रीसैंड को बनाते हैं।
तो अगर हम निचोड़ निकालने की कोशिश करें उनके मूल में क्या था, उनके वैल्यूज क्या थे, तो सबसे पहले तो वही आर्टिस्ट अथेंटिसिटी, अपनी सोच से कोई समझौता नहीं। दूसरा, परफेक्शनिज्म, बेस्ट की तलाश चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो।
और वो कंट्रोल की जबरदस्त चाहत, क्या वो बचपन के घावों से निकली इनसिक्योरिटी थी, जैसा एक नजरिया कहता है?
हाँ।
या फिर अपनी कला को बचाने का एक जरूरी तरीका, जैसा दूसरा नजरिया कहता है? या शायद दोनों? क्या ऐसा नहीं हो सकता?
बिल्कुल हो सकता है। और मजे की बात यह है कि इतनी इनसिक्योरिटी के बावजूद उन्हें अपने टैलेंट पर गजब का भरोसा था। उन्होंने अपनी अलग पहचान, चाहे वो उनका यहूदी होना हो या उनका लुक, उसे कभी छुपाया नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। ये बात तो दोनों ही दृष्टिकोण मानते हैं।
उनमें वो लगातार खुद को साबित करने की एक ड्राइव दिखती है, शायद अनजाने में ही माँ की आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश। और इन सब के पीछे, जैसा किताब इशारा करती है, बिना शर्त प्यार और एक्सेप्टेंस की एक गहरी मानवीय तलाश भी थी।
हाँ, उनके लिए कामयाबी सिर्फ नाम या पैसा नहीं थी, बल्कि आर्टिस्टिक एक्सेलेंस थी। लेकिन ये भी सच है, जैसा दूसरा नजरिया याद दिलाता है, कि इस जुनून की कीमत भी थी, रिश्तों में तनाव, अकेलापन और वो मुश्किल होने की इमेज।
चलिए अब उन तीन खास मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने उनकी कहानी को एक नई दिशा दी। पहला मोड़ तो शायद बहुत पहले आ गया था, बचपन में ही।
तना रहना और माँ की वो लगातार आलोचना, इसका असर ये हुआ कि इसने असुरक्षा, कंट्रोल की जरूरत और मंजूरी की एक ऐसी लाइफलॉन्ग खोज शुरू कर दी जिसने उनकी पूरी शख्सियत और उनके काम को आकार दिया। कहानी यहीं से शुरू होती है।
दूसरा बड़ा मोड़ मेरे हिसाब से फनी गर्ल था, पहले स्टेज पर और फिर फिल्म।
हाँ, फैनी ब्राइस का रोल और फिर ऑस्कर।
इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये अलग से दिखने वाली लड़की भी स्टार बन सकती है। इसने उन्हें हॉलीवुड में वो ताकत दी जो उन्हें चाहिए थी। हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ी उथल पुथल हुई, पर यह किरदार उनकी पहचान बन गया।
और तीसरा और शायद सबसे पावरफुल मोड था डायरेक्टर बनना, खासकर येंटल के साथ।
हाँ, वो संघर्ष,
ख्यालों का संघर्ष, इंडस्ट्री का विरोध, जेंडर बायस, इन सबसे लड़कर येंटल बनाना और कामयाब बनाना सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतों के लिए एक लैंडमार्क था। इसने साबित किया कि औरतें कैमरे के पीछे भी लीड कर सकती हैं और सफल हो सकती हैं। इस पर तो दोनों नजरिए एक मत हैं।
बारबरा की कहानी पढ़ते हुए ना अपने बारे में भी सोचने लगते हैं। किताब सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारे शुरू के रिश्ते, वो हमारी आज की इच्छाओं, हमारे डर, हमारे रिश्तों को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं।
और ये भी कि कैसे हम अपनी उन चीजों को जिन्हें हम अपनी कमी मानते हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। बारबरा ने अपनी नाक, अपनी आवाज, अपनी जड़ों को अपनी पहचान बनाया। उन्होंने दुनिया को मजबूर किया कि उन्हें उनकी शर्तों पर अपनाए। ये अपनी असलियत पर टिके रहने का, मतलब ऑथेंटिक होने का कितना बड़ा सबक है।
और हार ना मानने का जज्बा, वो दृढ़ता, खासकर तब जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो, जैसा येंटल के वक्त हुआ। अपने सपने के लिए लड़ते रहना। एक और गहरा सबक जो मुझे लगता है किताब से मिलता है, वो ये कि बाहरी कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अंदर के खालीपन या डर को हमेशा नहीं भर सकती। असली सुकून शायद खुद को अपनाने से और गहरे सुरक्षित रिश्तों से मिलता है, जैसे उन्हें जेम्स ब्रोलिन के साथ मिला।
ये हमें उन लोगों के लिए थोड़ी हमदर्दी रखना भी सिखाता है जिन्हें अक्सर मुश्किल कहा जाता है। किताब इशारा करती है कि कई बार ऐसे बर्ताव के पीछे कोई गहरा डर, कोई पुरानी चोट या वल्नरेबिलिटी छिपी हो सकती है।
और आखिर में ये कहानी दिखाती है कि कमाल का टैलेंट और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज अक्सर साथ साथ चलते हैं। महान उपलब्धियां कभी कभी गहरी भावनात्मक जरूरतें और संघर्षों से ही पैदा होती हैं।
और हाँ, जैसा दूसरा नजरिया याद दिलाता है, उस कामयाबी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर तीन मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
पहला, एक भावनात्मक सबक। शायद सबसे छूने वाली बात यह है कि बचपन के जो भावनात्मक घाव होते हैं वो जिंदगी भर हमारा पीछा कर सकते हैं। हमारी मोटिवेशन, हमारी इनसिक्योरिटीज, सब पर उनका असर रहता है, चाहे हम दुनिया में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं। असली शांति बाहरी सक्सेस से नहीं, बल्कि अंदरूनी एक्सेप्टेंस और सुरक्षित प्यार से मिलती है। ये किताब का एक अहम मैसेज है।
दूसरा, एक बौद्धिक सबक। इंटेलेक्चुअली सबसे जरूरी बात यह समझ आती है कि अपनी कला, अपनी सोच के प्रति ईमानदार रहना, उसके लिए अड़े रहना, भले ही दुनिया आपको मुश्किल समझे, ये न सिर्फ आपको लंबी कामयाबी दिला सकता है, बल्कि आप इंडस्ट्री के नियम भी बदल सकते हैं। कंट्रोल की मांग हमेशा ईगो नहीं होती, अक्सर वो अपनी कला को बचाने की कोशिश होती है। ये बात किताब के दोनों नजरिए उजागर करते हैं।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक। और हम सबके लिए एक प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अपनी यूनिकनेस, अपनी अलग पहचान को अपनाने में बहुत ताकत है। जिन चीजों से हम शायद शर्माते हैं या जिन्हें अपनी कमी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, अगर हम उन्हें हिम्मत से अपना लें। बारबरा स्ट्रीसेंट की जिंदगी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।